आप सुन रहे हैं गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क तेरी मेरी बातें सीजन 3 और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर। ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की और इस नए सीजन में हम बात कर रहे हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस की। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए उन सारे लोगों की कहानियों को जिनसे मैं मिला हूं, मुखातिब हुआ हूं और जिनको कई बार मैं जानता हूं, कई बार नहीं भी जानता हूं, लेकिन उनको रिसर्च किया है, उनसे बात करी है, इंटरव्यू लिया है और उनकी कहानियों को आपके समक्ष रखता हूं सो दैट हम सीख सकें उनकी लाइफ से कि जिंदगी को जीना कैसे है। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज है जो यूजर मैनुअल के साथ नहीं आती, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर एक की लाइफ जो है कस्टमाइज्ड है। जो चीजें मेरी लाइफ में काम कर सकती हैं वो आपकी लाइफ में नहीं करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी रोमांचक सी कहानी सुनाता हूँ। सो कुछ दिन पहले जब मैं उनके घर गया था, उनसे बात कर रहा था, तो उनकी बातें सुनते सुनते जो है मुझे वो थ्री इडियट फिल्म में आर माधवन और आमिर खान का एक सीन है ना, जिसमें वो बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे, वो मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा था। जैसे ही आयशा ने राशिद को बोला कि पापा नहीं मानेंगे, एक बार बात तो करो फिर मैं देखता हूँ क्या करना है, राशिद ने कहा। अब आयशा जो कि एक साउथ इंडियन हिंदू फैमिली से थी, जिनका नाम एक्चुअली आशा था पहले, शी वेंट टू हर फादर, बट जो पूरी फैमिली थी वो फैमिली जो है राशिद के अगेंस्ट थी। और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि सी राशिद वॉज एन इंजीनियर बाई क्वालिफिकेशन, रीजनेबली गुड लुकिंग, हैविंग रिच एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, गांव में जमीन जायदाद वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि वो मुस्लिम थे और यही जो चीज थी वो उनके और उनके प्यार यानी कि आयशा के बीच में आ रही थी। वेल समहाउ कुछ समय बीता और राशिद ने जो है उनके फैमिली को यानी कि आयशा के फैमिली को समझा बुझा के जो है जैसे भी करके दे बोथ गॉट मैरिड। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज के एपिसोड का टॉपिक ये है तो आप अलग सोच रहे हैं। आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ा फिल्मी सा हो रखा हूँ। एनीवे कहानी भी कुछ ऐसी है। वो याद है एक फिल्म आमिर खान की थी रंग दे बसंती, उसमें भी एक डायलॉग था, कॉलेज के गेट के इस पार हम जिंदगी को नचाते हैं और गेट के उस पार जिंदगी हमें नचाती है। वेल आयशा और राशिद जो है शादी तो कर ली उन्होंने और जहां एक तरफ जो है मेजॉरिटी जो है दोनों फैमिलीज में मान गए थे कि हाँ भाई चलो शादी करते हैं बच्चों की, आयशा की नानी एक तरफ आपने आखिरी समय में भी बोल के गए कि भाई राशिद बहुत अच्छा लड़का है, आयशा की शादी उसी से होनी चाहिए, वहीं उनके जो मामा थे आयशा के मामा बोलते थे मुस्लिम है, धोखा देगा देख लेना, 4 महीने में लड़की वापस आ जाएगी घर पे। वेल समय बढ़ा, लड़की कर्नाटका के एक बी टाउन में अपने घर तो नहीं गई लेकिन मुंबई जरूर आई राशिद के साथ, अपना एक आशियाना बनाने के लिए। हाँ वो बात अलग है कि राशिद को इस चीज का पहले से इल्म हो गया था कि उनको थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द टिप्स गिवन बाय हिज मदर इन लॉ। उनको अच्छी तरीके से याद है कि कैसे जो है उनकी शादी से पहले उनकी सासू माँ ने या उनकी मदर इन लॉ ने उनके कान में ये बातें डाली थी कि अरे तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो तुमको शादी करनी है, इसको तो चाय तक बनानी नहीं आती है। वेल वही आयशा शादी के करीब करीब 23 साल के बाद एक पूरा परिवार संभालती है, अपने 2 बच्चों को पढ़ाया है जिसमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। आप तो जानते हैं कि जैसा कि हमारा जो फोकस होता है GINF में गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क में, वो हमेशा बाउंसिंग बैक फ्रॉम द इश्यू होता है। एंड आज की कहानी की एक्चुअल प्रॉब्लम तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। 2008 की बात है जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इनकी जिंदगी में। आयशा और राशिद जो है बहुत हार्डवर्किंग थे और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी अपनी कंपनीज में थे, और जैसे होता ना कि यंग कपल जब एक बड़े शहर आते हैं तो बड़े सपने होते हैं, बस वैसे ये सपने लेकर चल रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट फिल्म सी सा चल रहा था भाई, अपने मन मर्जी के स्पाउस से शादी करना, पार्टनर से शादी करना, एक बड़े शहर में मुंबई जैसे शहर में आना, एक बेटा होना जिसकी भी अच्छी तरीके से परवरिश हो रही थी, सब कुछ उनकी मन की मर्जी के हिसाब से चल रहा था। लेकिन एक दिन राशिद का एक्सीडेंट हो गया और उनको चोट कहाँ आई, स्पाइनल कॉर्ड में। और आप तो जानते ही कि बड़ा सेंसिटिव चीज है ये, बहुत सेंसिटिव एरिया है, और इस चीज का इम्पैक्ट कुछ इस तरह का था कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसे हो गए थे, ना सीधे लेट सकते थे ना चल सकते थे, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रात दिन यही सोचते थे कि अब क्या होगा। इंजीनियर थे, अच्छी सैलरी थी इसलिए खर्चे भी ठीक ठाक थे, ऑल ऑफ सडन सब कुछ एक क्रैश पे आ गया। आपको याद है 2008-09 का जो पीरियड था, रिसेशन का टाइम था, उसी टाइम पे वो .com बबल भी बस्ट हुआ था, लेकिन क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है बहुत बूम हुआ था। एंड ही ऑल्सो गॉट इन टू दैट ट्रैप। वो कहते हैं ना जब प्रॉब्लम आती है तो हर तरफ से आती है, एक तो फैमिली की बड़ी इनकम घटकर 1/3 हो गई थी, फिर ट्रीटमेंट की वजह से लाइबिलिटीज बढ़ गई थी, उन रिलेशन से भी कोई बहुत खास सपोर्ट नहीं मिला जिसमें आमतौर पर लोगों को उम्मीद होती है। अब जिंदगी का सारा दारोमदार आ गया था आयशा के कंधों पे। दोनों भी काफी परेशान थे एक्चुअली, होना भी लाजमी है समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी को कैसे हैंडल करें। भाई कोई भी इस तरह की विपत्ति जो आती है, हम प्रेडिक्ट तो नहीं करते ना कि भाई ऐसा होगा। सो इफ इट कम्स एज अ सरप्राइज देन यू आर एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वही हालत इनकी भी थी, मन में कई तरह के ख्याल भी आ रहे थे, तमाम सवाल भी, एक छोटा बच्चा, प्रेगनेंसी, राशिद की फिजिकल प्रॉब्लम्स और ढेर सारी लाइबिलिटीज। लेकिन कहते हैं ना, ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। तो बस एक दिन टूथब्रश करते समय जब आयशा ने अपने आप को शीशे में देखा, उन्हें कुछ अंदर तक झिझोड़ गया। वो कुछ समय के लिए रुकी, अपनी ही आंखों में आंखें डाली और अपने आप से बोली, तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हारा तो नाम ही आशा है और राशिद का मतलब होता है बुद्धिमान, और अगर बुद्धि और उम्मीद एक साथ हो तो तुम कैसे हार सकती हो। बस उस दिन उनके अंदर ऐसा कुछ बदला जिसने उनका पूरा जीवन बदल के रख दिया, हमेशा हमेशा के लिए। राशिद की एक खूबी है कि वो कभी भी उनके रास्ते में आए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी तरह से जब मदद कोई मांगता है या कोई उम्मीद रखता है तो अपनी वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी हेल्प कर दी जाए। अक्सर हो जाता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन ये उनकी ह्यूमैनिटी जो है ना, वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। अब यूं भी कह सकते हैं कि शायद ये उनके अच्छे कर्मों का और दोस्तों के प्यार का नतीजा था कि उनका एक फ्रेंड इस तरह से सामने आया कि वो उनको एक केरला के किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर पे लेके गया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह गोद में, क्योंकि वजन इनका घट के आधा हो चुका था, उठ बैठ सकते नहीं थे ये और कर्व्ड कंडीशन में ही रहते थे। और करीब करीब 2 महीने तक उसने उनका ट्रीटमेंट करवाया और आज राशिद चल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। हाँ, फिजिकल फिटनेस जो है पहले जैसी नहीं है, लेकिन ही इज डूइंग गुड। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा, यार तू तो बड़ा लकी है, या फिर यार वो तो बड़ा लकी है। कौन होते हैं ये लकी लोग, कैसे बन जाता है कोई लकी यार? भाई मेरा तो ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो है लकी बनता है अपनी सही आदतों की वजह से। राशिद और आयशा की जो लोगों की हेल्प करने की आदतें, किसी अनजान के भी मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहने की आदतें, बस इसी आदत ने शायद उन्हें फिर से एक नई जिंदगी दे दी। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि यार अब ना हो पाएगा, लेकिन जिस दिन हम हिम्मत बना लेते हैं ना, उस दिन जो हमें नामुमकिन लगता है उसको भी हम इजीली करने लगते हैं। और आपको पता है ह्यूमन लाइफ की या इंसानों की सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि इंसान अपना जीवन कभी भी बदल सकता है, कभी भी। और कितने ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, लोगों ने 40, 50, 60, 80 की उम्र में वो सारी चीजें पाई हैं जो कभी उन्होंने बचपन में सोचा था करने के लिए। आप सोच के तो देखो यार, मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल मेंटल फ्रेम की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना, अक्सर प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम क्यों कोई चीज नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है, और हम वो सारी चीजें कर लेते हैं जिसके बारे में हम शिद्दत से सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। हमें भी यही करना होता है। हाँ, कई बार क्लैरिटी नहीं होती है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो ठीक है ना यार, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, आप उनसे क्लैरिटी ले सकते हो। देखो आसपास में कौन मिलता है आपको सलाह देने के लिए या गाइड करने के लिए, नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हो। आज दुनिया भर के काउंसलर्स अवेलेबल हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूं तो बिल्कुल अप्रोच कीजिए मुझे। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, नंबर तो आपको पता ही होगा, 9819888048। और अगर आपको मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, सुनना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, कोई मना नहीं करेगा। गूगल पे जाइए, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए और बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे मुझसे कनेक्ट होने के। और हाँ, इसके पहले आज के लिए मैं टाटा बाय बाय गुड बाय बोलूं, मैं 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तहे दिल से, जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म है, ये इम्पैक्ट है और ये प्यार है। मेरी धर्मपत्नी श्वेता और मेरे दादा देवाशीष रे, जो हेल्प करते हैं मुझे ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस करने में और आप तक पहुंचाने में। मैं फिर मिलूंगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।